श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है। हम पिछले कुछ दिनों से सुबह के समय भागवत के दसवें स्कंद के अनेकों अध्याय के ऊपर हम प्रवचन सुन रहे हैं। भागवतम का जो दसवां स्कंद है वो श्रीमद् भागवतम का चेहरा है, भगवान श्री कृष्ण का चेहरा है, भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण परिवर्तित, भगवान श्री कृष्ण का ही परिवर्तित स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण हैं और उनके अनेकों अनेकों अंग हैं, उसी प्रकार भागवत के ये जो 12 अंग है, 12 जो स्कंद है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अंगों के बराबर तुलना किया जा सकता है। पहले दो दो स्कंद हैं भगवान के चरण के बराबर है, दो चरण, तीसरा और चौथा उनके जांघ के बराबर है, पांचवा उनके पेट के बराबर है, कृष्ण के पेट के उधर समान है, और दो जो बाहु हैं भगवान श्री कृष्ण के वो छठा और सातवा, और छाती जो है वो आठवां स्कंद है, नवां स्कंद गर्दन है, दसवां स्कंद जो है भगवान का मुखमंडल, ग्यारहवां स्कंद उनका माथा है, और सर के ऊपर वाला भाग जो है वो बारहवां स्कंद है। तो ये दसवां स्कंद की महत्व क्या है या उसका विशेषता क्या है? अगर मान लीजिए आपने किसी को कहा कि मुझे आपका फोटो दीजिए, तो आप किसका फोटो दोगे? आपका हाथ का फोटो दोगे, पैर का फोटो दोगे, न चेहरे का फोटो दोगे? यानी एक व्यक्ति का जो पहचान है उनके चेहरे से होता है, हाथ पैर से नहीं होता है। उसी प्रकार भागवत का पहचान भी दसवां स्कंद से होता है। आपको दूसरे स्कंद के दसवें अध्याय में भागवत में कहा गया है, शुरुआत के श्लोक में है, भागवत में 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमुतया मन्वंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय वस्तु जो है भागवत के, इसका विभाजन भागवत के 12 स्कंदों में हुआ है। पहले दो स्कंदों में ये 10 विषय वस्तु सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि वो मिश्रित रूप में अनेकों जगह हुआ है पहले दो स्कंदों में। तीसरा स्कंद में भागवत का पहला विषय वस्तु का वर्णन है सर्ग। वैसे तो अन्य विषय वस्तुओं का भी वर्णन है तीसरे स्कंद में, लेकिन मुख्यतः सर्ग का वर्णन है। चौथे में विसर्ग का वर्णन है, पांचवें ने स्थान में स्थान का, छठे में पोषण का। इस प्रकार भागवत के जो दसवें स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन हुआ है, आश्रय तत्व कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण है। स्वात्मा स्व आश्रय आश्रय, स्वात्मा स्व आश्रय आश्रय का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण एकमात्र व्यक्ति है, वो किसी का आश्रय नहीं ग्रहण करते। ये भागवत में ये 10 विषय वस्तुओं में दसवां विषय वस्तु आश्रय तत्व है, कृष्ण है। अभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखे, इसको याद रखे, क्योंकि आज जिस लीला को चर्चा करने वाले हैं उसमें दिखाई पड़ता है भगवान भी आश्रय ग्रहण करते हैं। वो स्वयं अपने आप में आश्रय नहीं है, वो लीला है जो आज हम चर्चा करने वाले, जिसमें ये सिद्ध होता है, इसका वर्णन किया गया है, भगवान सारा जगत भगवान का आश्रय ले रहा है, सारा जगत कृष्ण का आश्रय लेता है, लेकिन कृष्ण का कोई आश्रय नहीं है। वो स्वयं अपने आप में पर्याप्त है, स्वराट है, लेकिन फिर भी वो आश्रय लेते हैं। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी भागवत के 10 विषय वस्तुओं में जो आश्रय तत्व है उसका वर्णन दसवें स्कंद में हुआ है। तो ये दूसरे स्कंद के दसवें अध्याय का पहला श्लोक में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन करने के बाद तुरंत वर्णन आता है। दसमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेन अर्थेन चांजसः। ये भागवतम के जो नौ विषय वस्तु है, नवानाम यह लक्षणम, ये नौ विषयों का लक्षण केवल भागवत में इसलिए वर्णन किया गया है ताकि दसमस्य विशुद्ध्यर्थम, दसम स्कंद का जो विशुद्ध्यर्थ या दसम तत्व है या दसवां विषय वस्तु है, आश्रय तत्व को और अच्छी तरीके से समझने के लिए ही ये बाकी नौ वस्तुओं का वर्णन किया गया है। बाकी नौ तत्वों का वर्णन किया गया है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि। इसलिए ये दस विषय वस्तुओं में बाकी जो नौ है या पहले जो नौ विषय वस्तु है वो निर्दिष्ट है, वो उद्दिष्ट नहीं है। भागवतम का उद्दिष्ट वस्तु है दसवां विषय वस्तु यानी आश्रय तत्व कृष्ण। भले ही राम नरसिंह इत्यादि अवतारों का वर्णन है, अवतारान चरितम हरे यस्यानुकीर्तया, अनेकों अनेकों अवतारों का वर्णन किया गया है, अनेकों अनेकों सृष्टि लीला का वर्णन किया गया है, बड़े बड़े राजाओं का प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र का भागवत में वर्णन किया गया है, भीष्म पितामह का वर्णन, पांडवों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये सब भागवत के उद्दिष्ट विषय वस्तु नहीं है। ये केवल इसलिए है ताकि ये उद्दिष्ट विषय वस्तु कृष्ण जो दसवें स्कंध में वर्णन है उनको समझना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो सोलह कलाओं से युक्त आके आए, जिनके अंदर चार विशेषताएं हैं जो नारायण में भी प्राप्त नहीं होते हैं, वो श्री कृष्ण को समझने के लिए ही भागवत का रचना किया गया है। तो भागवत के दसवां स्कंद में या उतना महत्वपूर्ण है दसवां स्कंद, बाकी नौ स्कंद की रचना क्यों किया है? बाकी नौ स्कंदों में या उनकी रचना इसलिए किया गया है ताकि हम इन नौ स्कंदों को पढ़ते पढ़ते आएंगे तो हमारा जो चेतना है दसवां स्कंद के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भागवत केवल दसवां स्कंद ही है, बाकी अन्य स्कंद जो है वो केवल दसवां स्कंद को समझने की तैयारी मात्र है। वो तैयारी क्या है? वैराग्य। बाकी नौ स्कंदों का सार यही है। बड़े बड़े राजा हुए, सब अपने राज्य को त्याग करके कृष्ण के शरण में गए। जब तक इस प्रकार का वैराग्य नहीं होता तब तक हम इस दसवें स्कंद में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भागवत का ये जो दसवां स्कंद है जो कृष्ण लीलाओं से भरा हुआ है, ये दसवां स्कंद को श्रवण करना ही भागवत का मुख्य उद्देश्य है। सुबह हम प्रवचन में इस बात को सुन रहे थे कि प्रभुपाद जी अचानक भागवत का अनुवाद करते करते इसका टीका देते देते बीमार पड़ गए, तो उनको डर लगा कि कहीं ना मैं ना कहीं अपना शरीर त्याग कर देता हूं या कर सकता हूं, कभी भी हो सकता है। अगर दसवां स्कंद जगत को नहीं मिले तो क्या फायदा? इसे भागवत की जो अनुवाद है उधर ही उन्हें रोक दिया और तुरंत भागवत का दसवां स्कंद का सार संकलन समरी स्टडी को प्रस्तुत किया। उनको इतना उत्साह था कि प्रभुपाद जी को कम से कम लोगों को ये दसवां स्कंद मिल जाए, तो भले ही बाकी भागवत के अन्य स्कंदों का अनुवाद हो ना हो वो चल जाएगा। तो ये दसवां स्कंद का ये महत्व है। तो ये दसवां स्कंद भगवान के मुखारविंद के बराबर है। तो ये दसवां स्कंद में पांच अध्याय ऐसे हैं जो भगवान के मुखमंडल में हंसी के बराबर है। जब आप किसी के मुख को देखते हो, चेहरे को देखते हो, सबसे ज्यादा आकर्षित है तो होते हो उनकी हंसी से। उनका मुखारविंद का जो हंसी है ये भागवत के दसवें स्कंद के अंतर्गत ये पांच अध्याय जिसको रास पंचाध्याय कहा गया है, ये भागवत के या भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का हंसी है। इट इज द स्माइल ऑफ कृष्णा। तो ये मुखारविंद का हंसी को चर्चा करना हमारा बस की बात नहीं है, ना हमारे पास योग्यता है, ना बोलने की योग्यता है, ना श्रवण करने की योग्यता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की ये गोपियों के साथ जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है उसको जो भी श्रवण करता है, जो भी सुनता है, श्रद्धा से उनके अंदर जो कामनाएं काम वासनाएं उससे वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए एक साधना के रूप में उनको थोड़ा सा चर्चा करने की प्रयास करेंगे। वैसे पांच के पांच अध्याय तो चर्चा नहीं हो पाएगा, शुरुआत के कुछ श्लोकों को थोड़ा सा चर्चा करने के प्रयास करेंगे। वो शुरुआत का श्लोकों में इतना सुंदर तत्व है, इतना रस है, तो अगर किसी को इस प्रकार के आस्वादन हो जाए तो तब हम ये भागवत के इन जो अध्याय है इसके रस के अंदर हम डूब सकते हैं, या आगे पढ़ने की उत्साह या इच्छा तो प्रकट हो सकता है। ये आशा के साथ हम ये जो स्कंद है, ये 29वां अध्याय है, उनको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उनके कुछ प्रारंभ के श्लोकों को जितना समय है आधा पौना घंटा तक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वो प्रकट हुए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके उन्होंने सारे जगत को अपने सिद्धांत को एक श्लोक में समझाया, एक श्लोक में बताया, जिसको प्रभुआनंद सरस्वती लिखते हैं। क्या कहते हैं? आराध्य भगवान व्रजेश तनय श्रद्धा वृंदावनम, रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, श्रीमद भागवतम प्रमाण मूलम प्रेमापुमार्तो महान। तो उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरो नापरः। चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। क्या मत है? ये मत ये है, आराध्य भगवान व्रजेश तनय, हमारे आराध्य देव कृष्ण हैं। लेकिन कौन कृष्ण है, किस प्रकार के कृष्ण हैं? वो कृष्ण हैं जो व्रजेश, जो व्रज के ईश्वर के जो तनय हैं, यानी नंद महाराज के तनय कृष्ण हैं, वो कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। कृष्ण द्वारकाधीश हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको पूजा भी कर देंगे, लेकिन हमारे हृदय के आराध्य देव के रूप में हम केवल व्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, उनको ही स्वीकार करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तद्धाम वृंदावनम, तो वृंदावन में निवास करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। तद्धाम, तद्धाम का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। अगर उस जगह से कृष्ण चले जाते हैं, वृंदावन कृष्ण का धाम नहीं होता, केवल गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए आए चले गए वो होता, उनका घर नहीं होता। घर वो जगह है जहां से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो कृष्ण का वास्तविक घर है, धाम है वृंदावन। वृंदावन परित्यज्य पारमेकम न गच्छन्ति, एक कदम भी कृष्ण वृंदावन को परित्याग करके नहीं जाते। तो वो जो व्रजेश तनय कृष्ण है, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो हमारे आराध्य देव है। आराध्य भगवान व्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम, रम्या क्वचित उपासना। अगर कोई प्रश्न पूछे, ठीक है मैं कृष्ण का उपासना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहता हूं, तो कृष्ण का आराधना कैसे करो? तो उसका जवाब देते हुए क्या कहा गया है? रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। खास करके आज के प्रवचन में किस प्रकार व्रजवधुओं ने कृष्ण का शरण लिया रासलीला में भाग लेने के लिए, उसके ऊपर विशेष करके हम चर्चा करेंगे। रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु, व्रजवधुओं ने जिस प्रकार, गोपियों ने, राधा रानी और अन्य गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण की आराधना की, उसी प्रकार हमको भी आराधना करना है। ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हुए सारे भक्तों से यही ये प्रार्थना है, ये समझे, ये ध्यान में रखें कि हमारी कृष्ण की आराधना करने की विधि क्या है। गोपियों की पदचिन्हों में चलना, गोपियों की पदचिन्हों में चलते हुए कृष्ण का आराधना करना, रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्तो महान। श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण है, और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है। तो ये सब करने के द्वारा, ये आराधना करने के द्वारा मुझे क्या प्राप्त करना है? व्हाट आई एम सपोज टू अचीव? मुझे ये प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम से एक एक इंच नीचे वाला चीज कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। जस्ट वॉन्ट टू अटेन कृष्ण प्रेम। रम्या कुछ उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मत है ये सर्वोच्च मत है। तत्रादरो नापरः। कृष्ण प्रभु उनको चेयर देंगे सरोजी को। चेयर यू सिटिंग, यू कैन सिट इन चेयर, गेट अ चेयर फॉर यू। तत्रादरो नापरः। उनका कोई इससे बढ़कर कोई मत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, इससे बढ़कर कोई और मत नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी अक्सर ये कहा करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु महान सन्यासी हैं, बहुत इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी हैं, वो होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद लेते थे कृष्ण के इन लीलाओं को आस्वादन करने में। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीलाएं हैं उनको आस्वादन करने में, उनको श्रवण करने में बड़े आनंद लेते थे। कृष्ण और गोपियों की जो लीलाएं हैं बड़ा गुह्यतम है, गुह्यतर ही नहीं बल्कि गुह्यतम लीलाएं हैं, उनको श्रवण करने चैतन्य महाप्रभु आनंद लेते थे। खास करके चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में अनेकों अनेकों लीलाओं को करते हुए उस समय जब वो राधा कृष्ण लीलाओं का स्मरण कराने के लिए स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, स्वरूप दामोदर गीत गोविंद से सुंदर सुंदर श्लोकों को, मधुर श्लोकों को गा के सुनाते थे, और राय रामानंद कृष्ण करणामृत के श्लोकों को उच्चारण करके सुना के श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में कृष्ण प्रेम की जो तरंगे हैं उनको शांत करा देते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको यही कहा कि ये जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त किए बिना किसी को चैन नहीं होना चाहिए। तो ये कृष्ण प्रेम होता क्या है, ये व्रजवधुओं की महिमा क्या है, उसका थोड़ा सा झलक देखेंगे, जहां गोपियां किस प्रकार कृष्ण के शरण ली, शरण लेने के बाद किस प्रकार राज किया, क्या हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन कैसे कृष्ण के शरण में गए उसका वर्णन भागवत का ये 29वां अध्याय में हुआ है। तो ये भागवत का 29वां अध्याय का पहले के प्रारंभ के कुछ श्लोकों को चर्चा करेंगे। ये दिन है शरद पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का दिवस है। भगवान श्री कृष्ण के ये जो महारास लीला हुई उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी श्री बादरायण रुवाच वो कहते हैं, वो गाते हैं, भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षारन्तुं मनसश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि। ये भगवान शब्द अति महत्वपूर्ण है। भगवान शब्द का अर्थ सब प्राय जानते ही हैं। भगवान का अर्थ है जिनके अंदर सारे भाग्य हैं, उनके अंदर ऐश्वर्य है, सर्व ऐश्वर्य है, सर्वैश्वर्यमान है, सबसे सुंदर है और यश है, ज्ञान है, बल है और वैराग्य है, सब कुछ है। लेकिन शब्द इधर इस्तेमाल किया गया है भगवान अपि। यह अपि शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है, भगवान होने पर भी, भगवान होने पर भी क्या हुआ कृष्ण को, कृष्ण साक्षात भगवान है, उनके हृदय में क्या अनुभव हुआ, कमी अनुभव हुआ। हम एक व्यक्ति का शरण तभी लेते हैं जब हमारे अंदर कुछ कमी होता है। सारे उपनिषद में वर्णन किया गया है कृष्ण पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्णात पूर्णमुदच्छते, अनेकों अनेकों शास्त्रों में कृष्ण को पूर्ण कहा गया है, सारे जगत का सारे ऐश्वर्य का स्रोत माना गया है और उनमें जरा सा भी कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा राम करके वर्णन किया गया है। लेकिन अभी वही भगवान, भगवान अपि, भगवान होने पर भी अपि शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है कृष्ण ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योग माया उपाश्रितः, कृष्ण ने योग माया का आश्रय ग्रहण किया। हमने ये देखा कि आज तक सारा जगत जो है सारे भक्त कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं, अभी इधर कृष्ण योग माया का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। ये रासलीला का विशेषता है, कृष्ण और गोपियों का ये जो रास पंचाध्याय का विशेषता इस श्लोक से शुरू होता है, जहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि, भगवान होने पर भी, कृष्ण के पास सर्व ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी उनके अंदर एक कमी महसूस आई। क्या कमी है? तो वो सोच रहे थे कि मैं अकेले अकेले में क्या करूं, मुझे अभी कुछ किसी का आश्रय लेना होगा, आई टू टेक शेल्टर, क्योंकि मुझे अभी ये जो उद्दीपन के कारण है जिनका वर्णन हम बाद में करेंगे, इस रात को इस जगह खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अकेला, मेरा बस का काम नहीं है, मुझे अभी कृष्ण का या मुझे आश्रय ग्रहण करना होगा योग माया का। इसलिए कहा गया है योग माया उपाश्रितः, भगवान की योग माया कौन है? भगवान की योग माया वो है जो भगवान की सारे लीलाओं को संपन्न कराती है, भगवान की सारे इच्छाओं को पूर्ण कराती है। भगवान कृष्ण आत्मराम है, सत्य संकल्प या सत्य कामा, वो खाली संकल्प मात्र ना, संकल्प करने मात्र से सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, सारे संकल्प पूर्ण हो जाता है। लेकिन वही कृष्ण अभी आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में इस प्रकार की भावना आई, मैं कैसे ये लीला को संपन्न करूं। खास करके भगवान ने अनेकों अनेकों लीलाओं को जब संपन्न करने की इच्छा प्रकट किया तो योग माया ने इन सारे लीलाओं को संपन्न करा दिया। पहले की जितने भी लीलाएं, सारे लीलाओं को भगवान ने संपन्न कर दिया, योग माया ने अरेंज कर दिया। लेकिन अभी जब ये लीला की बात आई, उसकी विशेषता को वर्णन करते हुए, विशेषता को सूचित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण योग माया का शरण ग्रहण किए। अभी हमने चर्चा किया कृष्ण कौन है, सारा जगत को आश्रय देने वाले हैं। शरणम शरण्यम गदो मुकुंदम, शरण के एकमात्र गंतव्य है कृष्ण। लेकिन अभी वो कृष्ण शरण ग्रहण के योग माया का, ये प्रार्थना के साथ योग माया ये लीला को संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न कराना। इसलिए भगवान अपि तारात्रि ही, ये था शरद पूर्णिमा की रात। अगर शरद पूर्णिमा की रात है तो ये रात्रि ही शब्द के द्वारा क्यों सूचित किया गया है? रात्रि ही शब्द का अर्थ ये है कि ये एक रात नहीं था, ये शरद पूर्णिमा का जो रात है वो ब्रह्मा जी के पूरा दिन में जितने भी रात होता है इस भौतिक जगत में, वो सारे रात्रि उधर उपस्थित थे। हर प्रकार की रात्रि जो कृष्ण के लीलाओं के अनुकूल अवस्था को प्रदान करना चाहती हैं, वो सारे प्रकार की रात्रि उधर उपस्थित थी। और कुछ आचार्यों का कहना है कि रात्रि के जितने भी अधिष्ठान देवियां हैं वो सब इधर उपस्थित थी। इसलिए ये जो बहुवचन के द्वारा संबोधित किया गया है भगवान अपिता रात्रि ही शारदोत्पुल्ल मल्लिका, शारदोत्पुल्ल मल्लिका, मल्लिका मल्लिका पुष्प थे, इसको कुंद या कुमुद पुष्पी कहा जाता है। शरद ऋतु में ये जो मोगरा है, मल्लिका कहते हैं मोगरा, वो कहीं आपको प्राप्त नहीं होता है, मोगरा मिलता है हमको गर्मी के मौसम है। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए उस दिन उस रात को, शरद पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, पूर्णिमा के रात को ये मल्लिका पुष्प विकसित होने लगे। यानी ये सारे तीनों गुणों के जो अंतर्गत ये जगत चलता है उसका ठीक विपरीत, सारे जितने भी शुभ कार्य अवस्थाएं वातावरण है योग माया ने निमंत्रण दिया था, खास करके शारद उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका पुष्प भी बिल्कुल विकसित हुए थे। वीक्षा रंतु मनसस चक्रे, वीक्षा कृष्ण ने देखा, उन्होंने क्या देखा, सबसे पहला उन्होंने देखा ये रात्रि है, और दूसरा शारदोत्पुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु के जितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं उन सबको देखते ही कृष्ण के मन में वीक्षा रंतु मनसस चक्रे, वीक्षा देखते ही कृष्ण के मन में रंतुम, उनको रमण करने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान परम भोक्ता है। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, लेकिन परम भोक्ता वो कैसे हैं, वो किस प्रकार कृष्ण भोगते हैं, वो ही वर्णन है सारे शास्त्र में। भगवत ज्ञान का पराकाष्ठा ये जानना कि कृष्ण भोक्ता है, इज अ सुप्रीम एंजॉयर। कृष्ण सब कुछ देते हैं, वो देते हैं। जिनको पाने की इच्छा रहते हैं वो सोचते हैं कृष्ण देने वाले हैं, लेकिन जिनकी शरणागति की भावना रहता है वो इस प्रकार विचार करते हैं कृष्ण भोक्ता है और मैं एक भोग्य वस्तु हूं। और कृष्ण के मन में क्या आया, मनसस चक्रे रंतुम, रमण करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि अभी मैं एक युवावस्था में हूं, मैं अभी कैशोर अवस्था में हूं। ये कैशोर अवस्था को परिपूर्णता तभी होगी जब मैं गोपियों के साथ रमण करूंगा, नहीं तो ये कैशोर अवस्था की क्या उपयोग है, क्या फायदा है। इस प्रकार कृष्ण विचार करने लगे, सोचने लगे और उनके मन में तीव्र इच्छा प्रकट हुई, तीव्र काम इच्छा प्रकट हुई कृष्ण में। सारे शास्त्र में वर्णन है कृष्ण जो है आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट से प्रसन्न है, उनके अंदर कोई भौतिक स्तर की कामना हो ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका तीनों गुणों से वो परे हैं और पर्याप्त है। उनका अंदर शोक मोह इत्यादि कुछ भी नहीं है। काम क्रोध मोह ये सारे जगत के अंदर ये काम क्रोध मोह को नाश करने वाले हैं। वैसे कृष्ण के अंदर पहले काम कहाँ है, लेकिन इधर प्रकट हुआ है, काम प्रकट हुआ कृष्ण के अंदर। वीक्षा रंतुम मनसस चक्रे, तब कोई प्रश्न उठा सकता है, नहीं नहीं इधर कृष्ण जो है गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए बहिरंगिक रूप में उन्होंने व्यक्त किया कि मैं मेरे अंदर इच्छा है। वैसे कृष्ण के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, गोपियों के साथ रमण करने की कोई इच्छा नहीं थी कृष्ण को, लेकिन गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार किया होगा, नहीं। मनसस चक्रे, ये शब्द मनसस चक्रे के शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कृष्ण के मन से, यानी अंतरंगिक हृदय के अंतरकरण से उनके उत्पन्न हुआ इच्छा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण केवल ड्रामा किए, ठीक है मैं तो आत्मा राम हूं, मुझे रासलीला करो ना करो, गोपियां हैं ना हैं, लेकिन उनकी आनंद के लिए मैं कुछ कर लेता हूं, ये भाव नहीं है। कृष्ण के निजी भाव था, उनके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, आई वॉन्ट टू एंजॉय, नहीं तो मेरा जीवन क्या व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ माय लाइफ अगर मैं गोपियों के साथ रमण ना करूं। ये कृष्ण की स्थिति है। देखिए जो सारे लोगों के ईश्वर है, जिनकी इच्छा मात्र से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं उनके रोमकूट से, वो कृष्ण गोपियों के इनके परम भक्त के सामने एकदम लालायित हो रहे हैं कि कब मिलेंगे ये गोपियां, कब उनके साथ में रास करो, कब उनके साथ नाचू। ये पहला श्लोक में बागराय रुवाचा सुखदेव गोस्वाई परम विरक्त भक्त, वो कृष्ण के अंदर किस प्रकार कामना उत्पन्न हुई गोपियों के साथ रमण करने की, उसका वर्णन करते हैं। जैसे कृष्ण विचार कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा श्लोक में कृष्ण सोचने लगे कि अगर मैं रमण करूंगा इन गोपियों के साथ, मैं परब्रह्म हूं, वो भी इन गोपियां कुछ अविवाहित हैं कुछ विवाहित हैं, तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उस समय उद्दीपन के कारण चंद्रमा प्रकट हुई, तो ये चंद्रमा का गुणावली का वर्णन करते हुए ये दूसरा श्लोक है। सदोड़ राजा ककुब करे मुखम प्राच्याविलिम्पन् अरुणेन संतमै साचाष्णीमुद्घातुच्छो मृजन् प्रियया प्रियायव दीर्घदर्शना। तदो उडुराज, उडुराज ये बहुत, उडु का अर्थ है नक्षत्र, उडुराज का अर्थ है नक्षत्रों की राजा कौन है, चंद्रमा। कृष्ण ने चंद्रमा की ओर देखा, चंद्रमा क्या कर रहा है। तदो उडुराज ककुभ करेर मुखम, वो पूरब में चंद्रमा का उदय हुआ, पूर्णिमा होने के नाते पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे उनका उदय हुआ तो कृष्ण देखा करेर मुखम, चंद्रमा अपने हाथों से, चंद्र अपने हाथ क्या, चंद्र का हाथ क्या, उनकी किरण, उनके किरणों के द्वारा पश्चिमी दिक को आलिंगन कर रहा है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। पश्चिमी दिक जो है वो इंद्र की पत्नी है। कृष्ण सोचने लगे मेरे पूर्वज है और मेरे जो कुल के आचार्य हैं चंद्रमा, चंद्रमा क्या कर रहे हैं अभी, ये चंद्र पश्चिमी दिक में या पश्चिमी दिक को आलिंगन कर रहे अपनी अपनी हाथों से करेर मुखम, और क्या कर रहे हैं वो करेर मुखम की हाथों से पश्चिमी दिक जो इंद्र की पत्नी है उनको कुमकुम से पूर्ण तरीके से वो लेपन कर रहे हैं, यानी वो भी उनके पास अनेकों अनेकों पत्नियां होने पर भी चंद्रमा इंद्र की पत्नी के साथ रमण कर रहा है चंद्र। इसलिए मैं, मेरे पूर्वज है चंद्र, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते वितृकृते जना, मेरे पूर्वज चंद्र ने किया तो मैं करूंगा तो मेरे क्या गलती है। वैसे भगवान जो भी करते पूर्ण है, लेकिन रस शास्त्र में ये वर्णन हुआ है भले ही रस का आस्वादन होना है उसके लिए उद्दीपन की आवश्यकता होता है। उद्दीपन का अर्थ ये है जो वस्तु जिनके जिनको दर्शन करने से, जिनको देखने से, स्मरण करने से, एहसास करने से हमारे अंदर काम की वासना उत्पन्न होती है उसको उद्दीपन कहा जाता है, इच्छा प्रकट होती है उसको उद्दीपन कहा जाता है। इधर जो है चंद्रमा उद्दीपन हुआ, चंद्रमा वृंदावन के जो सुंदर वातावरण है ये उद्दीपन का कारण बना, और पुष्प है ये उद्दीपन का कारण बना। खास करके ये चंद्रमा है उनके गुणों को स्मरण करते हुए कृष्ण सोचा मेरे जो पूर्वज वो क्या कर रहा है, चंद्र वो इंद्र की पत्नी को आलिंगन कर रहा है, करेर मुखम उनके मुख को अपने उनके करों से वो कुमकुम को अर्पण कर रहा है। तो कृष्ण सोचने लगे अगर मैं भी इस प्रकार करूंगा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो कृष्ण तदो उडुराज ककुप करे मुखम साक्षा विलंपन अरुणेन संतई, चंद्रमा के जो उनके जो किरण होते हैं वो हल्का सा लाल रंग का होता है, कुमकुम का, कुमकुम के रूप में वो सोच रहे हैं। साक्षाष्टिम उद्घात चो मृजन प्रिया प्रियया इव दीर्घ दर्शना, अनेकों दिनों के बाद जब पति घर में आता है तो पत्नी बहुत खुश होके आनंदित होती हैं। उसी प्रकार चंद्रमा को ये देखते हुए कृष्ण सोचा कि गोपियां भी उसी प्रकार आनंदित हो जाएंगे मेरे रास्ते में भाग लेते हुए। ये स्मरण करते हुए कृष्ण और विचार करने लगे। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्ड मण्डलम् रमाभनामम् नवकुङ्कुमारुणम् वनम च तत्कोमल गोभिरञ्जितम् जगोकलाम वाम दृशाम मनोहरम। श्लोक में दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम, दृष्ट्वा, कृष्ण ने देखा, किनको देखा, अखंड मंडलम, पूर्ण चंद्रमा को उन्होंने देखा। देखे रमाभनामम नवकुंकुमारुणम, तो उन्होंने विचार किया रमाभनामम, रमा किसी को भी सूचित किया जा सकता है, रमा गोपियों को भी सूचित किया जा सकता है। कृष्ण ने सोचा कि रमा का अर्थ है जो आनंद प्रदान करते हैं, जो गोपियां भी बस मेरी आनंद के लिए ही हैं, तो मैं उनको निश्चित रूप में उनके साथ रमण करूंगा। नव कुंकुमारुणम, मैं उनको जिस प्रकार चंद्र ने कुंकुम के द्वारा ये पश्चिमी दिशा को उन्होंने आलिंगन किया, उसी प्रकार मैं गोपियों को आलिंगन करूंगा। वनम चतत कोमल गोबिरंजितम, तो उन्होंने देखा सारा वृंदावन जो है चंद्रमा का जो ये कांति के द्वारा पूरा प्रज्वलित हो चुका है, जैसे सूर्य का जो किरण होता है वो रोशनी भी देता है साथ साथ में ताप भी देता है, लेकिन चंद्रमा का जो शीतल जो प्रकाश है, जो कांति है, सारा वृंदावन में छा गया था। तो योगमाया के अरेंजमेंट के द्वारा कृष्ण ने सोचा कि अभी उपर्युक्त समय है, रास करने का उपर्युक्त समय है, गोपियों को प्रसन्न करने का, उनसे उनसे उनका आनंद को अनुभव करने का ये बिल्कुल उचित समय है। वैसा सोचते हुए कृष्ण ने क्या किया, अपनी वेणु नाद बजाए, वेणु नाद लरे निर्वाण निर्व्याकुलम। कृष्ण कर्णामृत में इलमंगल ठाकुर कहते हैं वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, उस बात को इधर वर्णन किया गया इस श्लोक में, इसके आगे के तीन चार श्लोकों में। जगो कलाम वाम दृश्याम मनोहरम, कृष्ण ने क्या किया, वाम दृश्याम मनोहरम, एक सदस्य अर्थ ये होता है कि कृष्ण ने बांसुरी बजाया तो वाम दृश्याम मनोहरम, सारे गोपियों का मन को कृष्ण ने हर लिया। लेकिन इधर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ध्यान में रखें, जगो कलाम, ये कृष्ण ने जब उन्होंने बांसुरी बजाए, वो बांसुरी से या वेणु से क्या आवाज प्रकट हुआ, क्या गान प्रकट हुआ। एक मंत्र है जिसको काम गायत्री कहा जाता है, जो बड़ा गुप्त मंत्र है, जो ब्राह्मण दीक्षा मिलता है उन भक्तों को मिलता है, काम गायत्री मंत्र, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकती हैं। तो काम गायत्री का जो बीज मंत्र है, जो क्लिम है, उसका बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को कृष्ण ने गाया ये बांसुरी के द्वारा। कहते हैं जगो कलाम वाम दृश्याम मनोहरम, जगो कलाम वाम दृश्याम, काला कलाम ककार से काता है, लकार से लाता है, काला। और वाम दृश्याम, वाम दृश्याम जो है ई है, और मनोहरम मन को हरण करना, मनोहरम का पहला शब्द है मां, तो काला ई मां सब मिला के हरम का अर्थ है कि संगठन करना। ये संगठन करने से क्या होता है, क्लिम होता है। तो ये वेणु बजाने के द्वारा कृष्ण ने ये जो काम बीज मंत्र हैं उनको उन्होंने उच्चारण किया, जैसे वो गोपियों के कानों के अंदर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो क्या हुआ, उसका वर्णन आगे के श्लोक में है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अजग्मुरन्योन्यमलक्षिताभ्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जैसे वो गीत भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ, जो मधुर गीत है बांसुरी का गीत है, जैसे गोपियों के कान में प्रवेश किया, प्रवेश करते तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम, ये गीत है ऐसा सुंदर गीत है, जैसे कि गोपियों के कान में प्रवेश किया तो क्या हुआ, अनंग वर्धनम। अनंग का अर्थ है कामदेव, जिनके पास कोई अंग नहीं है, यानी कामदेव का अर्थ है काम। गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति काम जागृत हुआ, ये गोपियां कहां थी, अपने अपने घरों में थी, और कृष्ण अभी वृंदावन के जंगलों में है, वृंदावन में है या वन में है, बहुत दूर है, जहां गोपियां निवास कर रही है वो बहुत दूर है उनके घरों में। ये जो कृष्ण का जो बांसुरी का आवाज है वो केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ा, वो भी जिन गोपियों को कृष्ण चाहते थे उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा। और क्या हुआ, तद अनंग वर्धनम, उनके हृदय में जैसे सुने तुरंत उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ। वो जैसे कोई व्यक्ति इस जगत में कोई काम एकदम तीव्र जागृत होता है तो रह नहीं सकता अपने प्रिय व्यक्ति से मिले बिना, उसी प्रकार सारे गोपियां कृष्ण मिलने के लिए भागी। निशम्य गीतम तरंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः, व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। ऐसा हुआ कि ये जो निशम्य गीतम वेणु की जो आवाज है, कृष्ण का जो बांसुरी का जो आवाज है, वो जो मधुर गीत है, गोपियों के कानों से प्रवेश किया और हरण किया गोपियों को। क्या हरण किया, मन को हरण किया। मन के साथ साथ कुछ और भी हरण किया, मन में कुछ चीजें होता है उन सबको हरण किया। वो मन के अंदर बहुत सारे कुछ ऐश्वर्य होता है, कुछ गहने होते हैं, जैसे चोर घर में घुस के गहनों को चुरा लेता तिजोरी के अंदर, उसी प्रकार इन गोपियों के मन नामक तिजोरी के अंदर उनकी जो शीलता है, सबसे पहला ऐश्वर्य शीलता जो है, एक स्त्री का बड़ा ऐश्वर्य होता है। सबसे पहला क्या किया, ये जो बांसुरी का आवाज जो है उन गोपियों के कानों से प्रवेश करके मन नामक तिजोरी में प्रवेश करके सबसे पहला तिजोरी नामक का ऐश्वर्य है उसको हर लिया, उनको छीन लिया। और दूसरा क्या उन्होंने छीन लिया, उनको लज्जा को छीन लिया। लज्जा भी बड़ा एक ऐश्वर्य माना जाता है, स्त्री का बड़े ऐश्वर्य है, लज्जा छीन लिया। और तीसरा क्या छीन लिया, भय छीन लिया। और चौथा क्या छीन लिया, विवेक छीन लिया। और अंततः पूरा उनका जो मन है, हृदय है, उसको यानी प्रेम है, उनको भी छीन लिया। वो छीन के ये बांसुरी का आवाज वो सब इकट्ठा के सारे जितने भी गोपियां हैं सबके हृदय में, सबसे पहला उनका शीलता, दूसरा उनका लज्जा भय, और अंततः उनका जो विवेक है, सबको छीन लिया। छीन के कृष्ण के पास लेके आई बांसुरी का आवाज। देखिए ये तो गोपियों की बात चल रहा है, कृष्ण की बांसुरी का आवाज साक्षात श्रवण कर रहे हैं गोपियां। हमारी भी ऐसी स्थिति है, देखिए श्रद्धा से अगर कोई कृष्ण कथा गीता भागवत सुन लेता है, गीता भागवत की वाणी जैसे एक भक्त के कान में प्रवेश करता है, एक व्यक्ति के कान में प्रवेश करता है, सबसे पहला उनका शीलता को छीन लेता है कि नहीं। कोई घर परिवार वाले हैं, उनका कर्तव्य होता है, अनेकों का कर्तव्य होता है, उनके पति को देखभाल करना, पति को देखभाल करना या बच्चों को देखभाल करना, ये सब उनका कर्तव्य होता है, ये उनकी शीलता होता है। जैसे जन्माष्टमी सुबह 4:30 बजे पहुंच गए, घर में बच्चा रो रहा है, वो सब चीजें बाद में देखेंगे, चलो आ जाएंगे हम लोग। दूसरा लज्जा, आपने कभी जीवन में सोचा रास्ते को और हमने कहा दोनों हाथ उठा के नाचेंगे हम? ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है या ये हरे कृष्ण भक्त है जो वो प्रवचन देते हैं वो सुन के एक व्यक्ति जो है बेशरम हो जाता है, रास्ते में दोनों हाथ उठा के नाचना शुरू करता है, ये लज्जा को भी हर लेता है। और तीसरी बात भय, किसी के घर में घुस जाते हैं, हरे कृष्ण जन्माष्टमी आ रहे, थोड़ा आप आइए, थोड़ा दक्षिणा दान दीजिए, दूसरों के घर में निमंत्रण के बाद भी जाने के लिए लोग सोचते हैं दो बार, लेकिन हम कहीं पहुंच जाएंगे, हरे कृष्ण कैसे आप आइए। तो ये है भय, और अंततः विवेक। इस जगत में एक एक पैसा कमाता व्यक्ति सोचता है कि मैं इसको जुगाड़ के रखूं, इससे इतना कमाओ, इससे मैं ये बनाओ, बहुत सारी योजना बना के बहुत विवेकता से वो धन कमाता है, वो विवेकता से बहुत उसको खर्चा कर रहे हैं, बहुत विवेक को प्रयोग करता है। लेकिन जैसे हरे कृष्ण में आया, जैसे कृष्ण का प्रवचन सुना, भगवद गीता सुना, तो भगवान एक बर्ता के बोलते प्रभु जन्माष्टमी आ रहा है, 5,000 रुपए ले लो, देता है। ये आगे पीछे सोचता नहीं, विवेक नष्ट हो जाता है। अंततः उनका मन जो है वो कहीं भी रहे कृष्ण में रहता है। साधन के स्तर में है ऐसा स्थिति है तो गोपियों के स्तर में क्या होगा, एक बार विचार कीजिए। तो ये जो कृष्ण का निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी को जो भी श्रवण करता है उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उद्दिष्ट के साथ उत्तम उनके मन में एक एक गोपी का स्मरण आ जाता है, मैं इनको ये गीत सुनाऊंगा, मुझे ये गीत इनको सुनाऊंगा। इस प्रकार बांसुरी का आवाज उस गोपियों के कान में प्रवेश किया और ये जो महान ऐश्वर्य है गोपियों के हृदय में, ये चार या पांच चीजें खास करके शीलता, लज्जा, विवेक और भय, इन सब को छीन के बांसुरी का आवाज कृष्ण के पास लेके आ गई। जैसे कोई चोर जो जाके पूरा डाका डाल देता है, उसी प्रकार कृष्ण ने एक बड़ा डाका डाल दिया है बांसुरी बजा के ब्रज में। ऐसा डाका डाल दिया कि सारे घरों में से पूरा तहलका मच गया, हल्ला गुल्ला हो गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्ती है कृष्ण गृहित मानसा। तो सारे गोपियों ने सोचे कौन है वो चोर जिसको पकड़ने के लिए हमको जाना है, हमारा सारा ईश्वरी लूट लिया, चलो भागो। जग्मोन्यलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सब लोग भागने लगे, सारे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए भागी। और कैसे भागी? जवलोल कुंडला सयत्र कांतो, कहां है हमारा कांत, कहां है हमारा कृष्ण। ये भाव से सारे गोपियां कृष्ण के चरण में गई, कृष्ण से मिलने के लिए गई। जवलोल कुंडला, कुंडल और कंकण इत्यादि सब हिलने लगे, यानी इतना तेजी से भाग रहे थे गोपियां, उनको कोई होश ही नहीं है। यानी ये जो भगवान की जो बांसुरी का जो आवाज है, उनका जो गीत है, बांसुरी का जो गीत है, वेणु गीत है, वो क्या हुआ, वो गोपियों के जो मन के अंदर जो ऐश्वर्य है उनको हरण किया, बहिरंगी का ऐश्वर्य को हरण नहीं किया। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर सच में कृष्ण को प्राप्त करना है तो सबसे पहला ये शीलता है। मैं एक पति हूं, पत्नी हूं, मैं एक बच्चा हूं, मैं मामा हूं, मैं काका हूं, मैं ये हूं, ये सब जितने भी शीलता को बना के रखने वाले जो बातें हैं इसको त्याग करना है। दूसरा, तिलक धारण में शर्म लग रहा है कि लज्जा क्या, लोग क्या सोचेंगे, इसको त्याग करना है लज्जा। तीसरा, भय, अगर मैं जाऊंगा किसी से डोनेशन मांगने के लिए वो क्या सोचेगा, कुछ करेगा क्या, भय को त्याग करना है। क्या मैक्सिमम क्या करेगा, दरवाजा बंद कर देगा, उतना ही तो करेगा, या तो कुछ नहीं करेगा। और अंततः विवेक, अगर बुद्धि प्रयोग करेंगे, अभी क्या है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, ये काम कर लो, बाद में कृष्ण का शरण लो। जब अपने बुद्धि प्रयोग किया खत्म हो गया भक्ति, उधर जैसे आपने भय प्रकट किया उधर भक्ति खत्म हो गया। पता नहीं वृद्धा बुढ़ापे में क्या होगा, थोड़ा सा जमा करके रख लेता हूं, जैसे बुद्धि प्रयोग किया खत्म। गोपियों ने सब विवेक को खत्म कर दिया। कृष्ण ने सबसे पहला जो रुकावटें थी, जिन रुकावट जिसके वजह से गोपियां उनकी शरण में आने के लिए रुकावट पहुंचा रही थी, कृष्ण ने अपनी बांसुरी की आवाज से क्या किया, उन सब रुकावट को चोरी कर ली। इसलिए कृष्ण को हरि कहा गया है, क्योंकि उन्होंने वो हरण किया। क्या हरण कर लिया, ये जो चार पांच चीजें हैं गोपियों के हृदय में वो हरण कर लिया। इसलिए कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहिए, गीता भागवत को श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के द्वारा हमारे अंदर ये जो कलमश है, कलमश मतलब यही है, कृष्ण को शरणागत होने के लिए रोकने वाला जो धर्म है, जो शीलता है, वही कलमश है। कृष्ण के शरण में जाने के लिए रोकने वाला जो भय है, वही हमारा कलमश है। मेरा क्या होगा, थोड़ा सा ये बैंक बैलेंस अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अभी अभी थोड़ा और कमा के बाद में शरण में जाऊंगा, दो तीन घर हो जाए तब जाऊंगा, ये भय है, यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारा शरण जाने के लिए रुकावट का कारण है। और विवेक, बुद्धि, बहुत सारा कैलकुलेशन चलता है हमारे मन में, ऐसा हुआ तो यही हमारा दुख का कारण है, यही हमारा कृष्ण के शरण में जाने की रुकावट का कारण है। जिससे कृष्ण क्या किया, इन सारे रुकावट जो गोपियां मन ने उनको हर लिया, सारे गोपियां कृष्ण की ओर भागने लगी। आगे के तीन श्लोकों में किस प्रकार गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई उसका वर्णन है। दुह्यंतो अभियो काश्चित दोहमित्वा समुत्सुका पायो पयो दिश्रित्य सम्यवान अनुद्यास्यापार्ययो। तो कुछ गोपियां दोहन कर रही थी, गाय का दोहन कर रही थी, शाम को भी दोहन होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, दोहन कर रहे थे। दोहमित्वा, जैसे उनको ये निशम्य गीतम तरंग वर्धनम, निशम्य गीत जैसे सुनाई पड़ा, तुरंत खड़े हो गए। दोहन करने के समय आपको मालूम है जैसे आपने दूध निकाले होंगे, तो जब कोई बैठता है दूध निकालने के लिए तो जिस बर्तन में दूध निकालते हैं बीच में रखते हैं और ऐसा निकालते हैं, और जैसे कृष्ण का ये निशम्य गीत सुनाई पड़ा, वेणु गीत सुनाई पड़ा, वो तुरंत खड़े हो गए, तो क्या हुआ होगा दूध को, तो नीचे गिर गए और खड़े होकर तुरंत भागे। और कुछ गोपियां दूध निकाल चुकी थी, निकाल के उन्होंने स्टव के ऊपर रखा था, वो तो गाय का गोबर का उससे बना हुआ चूल्हा के ऊपर रखे थे और देख रहे थे कब उबलेगा दूध, और जैसे ये आवाज सुनाई पड़ा तुरंत भाग गया, नहीं दूध उबल के बाहर निकल गया होगा बाद में। और कुछ गोपियां वो पूरा दूध निकाल दिए थे और उनको दूध को उबाल भी दिए थे, और कुछ गोपियां जो हैं वो दूध निकालने के बाद उनको जो गोबर के जो होते हैं उसको तो बुझाना पड़ता है, वो नहीं बुझाए तो वो सब भाग गए। यानी हर गोपी अलग अलग अवस्था में उन्होंने ये सोचा नहीं आगे एक काम करके जाऊंगा, पहले कृष्ण से मिलना है बाद में बाकी सब देखा जाएगा। सीधा कृष्ण से मिलने के लिए एकदम जब अरोला कुंडला भागते भागते गए, कैसे भागी कोई आगे पीछे सोचा नहीं, जैसे वेणु का आवाज सुनाई पड़ा सब भागे। देखिए सबके घर में सारे गोपियां कुछ किसी के पत्नी किसी के बेटी सब भाग रही है, तो क्या हालत होगा पूरा व्रज में। आगे के और दोस्तों को मैं वर्णन है, परिवेशयन्तयश्चलित्वा पाययन्त शिशूंपय शुश्रूषयन्त पतिं काश्चित् अश्नयन्तो वाच्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमोद्यन्तोऽन्या आज्ञयन्त काश्च लोचने व्यतयस्त व्यतवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। और कुछ गोपियां थी परिवेशयन्तस्तदित्वा परिवेशयन्त करके कुछ गोपियां वस्त्र धारण कर रही थी, और जैसे धारण करने के समय उनको सुनाई पड़ा गोपी गीत सुनाई पड़ा या वेणु गीत सुनाई पड़ा, वो सुनते ही उसी समय भागे। पता नहीं कोई आधा पहना है, कोई पौना पहना है, कोई कुछ पहना है, बिल्कुल कुछ होश नहीं। परिवेशयन्तस्तदित्वा पायन्त शिशुंपया, कुछ गोपियां क्या कर रही थी अपनी बच्चों को दूध पिला रही थी, और जैसे ही सुनाई पड़ा वेणु गीत तुरंत बच्चे को छोड़ा और भागे। ये हालत था व्रज में। शुश्रूषयन्त पतिं काश्चित्, कुछ पति को चावल परोसती थी, अभी दाल परोसना बाकी था, दाल परोसने के लिए दाल का बर्तन उठाने के लिए उसी समय भाग पति से सोच रहे क्या हो गया तुमको। अस्तंतोपास्य भोजनम, अब कुछ गोपियां खा रहे पतिदेव को पूरा पूरा उसका सेवा करके जो खा रही थी, जैसे वो वेणु गीत सुनाई पड़ा तुरंत तो बीच में मुंह में डाले भी नहीं, वो छोड़ के उधर ही भागे। लिम्पन्त्य प्रमुज्यन्तोन्याः, कुछ गोपियां क्या कर रही थी अपने आपको श्रृंगार कर रही थी। कुछ गोपियों ने क्या किया, मैं कुछ चुड़िया धारण किए थे, कुछ गोपियां ने एक हाथ में धारण किया दूसरे हाथ में नहीं धारण किया था, वो जैसे सुनाई पड़ा आगे आगे पिछले बाद में आता है कृष्ण कहते हैं गोपियों को क्या हो गया तुमको, ये क्या अवस्था है तुम्हारा, एक हाथ में कंगन है दूसरे हाथ में नहीं है, एक बाद में श्रृंगार है दूसरे बाद में नहीं है। आगे और कुछ गोपियां, अंजयंत काश्च लोचने, वो अपने आंखों को काजल लगा रही थी, और एक आंख में काजल है दूसरे में नहीं है, कुछ लोगों को तो आधा ही लगा हुआ था। यानी हर अवस्था में सब अपने सारे कार्य को त्याग करके कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण का ये जो वेणु गीत है उसका वेणु का जो आवाज है इतना मधुर है इतना सुंदर है, सारे गोपियों को मन को हर के कृष्ण ने सब गोपियों को अपनी ओर खींच लिया। और गोपियों ने क्या किया, वो आभरण तो आभूषण धारण किए थे, और ऐसी अवस्था में थी तो हड़बड़ा में कोई नीचे का जो पहनने वाला चीजें ऊपर पहन ली, जो ऊपर वाला पहनने वाला तो नीचे पहन लिए, और वो वस्त्र सब लोग भागने लगे, भागने लगे। सावाद्यमाना पतिवे पतिवे पितृवे भातृबान्धवी गोविंदा परतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। तब कैसे ये सारे गोपी इस प्रकार भागने लगी, कुछ गोपियां तो भाग गई, लेकिन उनके कुछ गोपियों के पिता जिनको विवाहित नहीं हुआ था, उनके पिता और भाई, और जिनका विवाह हो गया था उनके पतिजन आके सीधे गोपियों को पकड़ लिए उनको और सीधा जाकर कमरे में जाके बंद कर लिए। लेकिन कुछ गोपियां चली गई, लेकिन कुछ गोपियां रह गई। अभी भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में जो भाग लिए गोपियां हैं उनके बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत प्रकार के हैं। एक है नित्यचरी, नित्य सिद्ध चरी। नित्य सिद्ध मतलब वो हमेशा कृष्ण के पार्षद हैं। वो गोपियां आराम से चली गई, उनके भाई बंधु पति सब लोग बोल रहे थे ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन उनके पास योग माया की योजना के द्वारा वो कुछ नहीं कर पाए, तो सारे गोपियां चली गई। ये नित्य सिद्ध गोपियां हैं, नित्यचरी हैं। और कुछ गोपियां देवचरी, वो भी चली गई, क्योंकि देवचरी जो है नित्यचरी गोपियों के ही विस्तार है, तो वो भी चली गई। और कुछ गोपियां हैं जो श्रुतिचरी हैं, वो भी चली गई। और कुछ गोपियां हैं जो ऋषिचरी है। आपको मालूम है दंडकारण्य में भगवान रामचंद्र के साथ संपर्क हुआ था, कुछ ऋषियों ने कहा था आपसे विवाह करना चाहते, रामचंद्र ने कहा हंसते हुए कहा नहीं 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 अगले जन्म में आऊंगा तब आपको स्वीकार करूंगा, कृष्ण के रूप में स्वीकार करूंगा। वो ऋषिचरी गोपियां कुछ तो चली गई थी, लेकिन कुछ गोपियों को बांध के रख दिया उनके पतियों ने, तो उनका वर्णन आगे के श्लोक में है। अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनया युक्ता दद्योर्मिलितलोचनाः। अंतर्गृहगत काश्चित्, कुछ लोग अंतर्गृह गृह के अंदर उनको डाल के रख दिया। गोप्यो लब्ध विनिर्गताः कृष्णं तद्भावनया युक्ता दद्योर्मिलितलोचनाः। तो लोग क्या करने लगे गोपियां, मिलित लोचना अपनी आंखों को बंद करके क्या सोचने लगे, कृष्णम तद्भावनया युक्ता कृष्ण प्रेम से विरह प्रेम को अनुभव करते हुए दद्युर मिलित लोचना, वो आंखों को बंद करते हुए कृष्ण का स्मरण करने लगी। तो ये गोपियां कृष्ण के पास जा नहीं पाए, लेकिन कृष्ण स्वयं इन गोपियों के पास आए। दद्युर मिलित लोचना, अपनी आंखों को बंद किए तो कृष्ण उन गोपियों के हृदय में प्रकट करके उनको आलिंगन किए। लेकिन फिर भी प्रश्न उत्पन्न होता है, ये गोपियां क्यों नहीं जा पाई, उसके पीछे कारण है। कारण ये है, हम कृष्ण के रास में तभी भाग ले सकते हैं जब गोपियों के पदचिन्हों में जाएंगे। जब तक नित्य सिद्ध गोपियों के पदचिन्हों में नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना संभव है। आपको याद होगा कुछ अध्याय पहले कात्यायनी व्रत की सारी गोपियों ने, उस कात्यायनी व्रत जब चल रहा था उस समय जो अविवाहित गोपियां ने निश्चित रूप में कात्यायनी व्रत किया, लेकिन कुछ गोपियां कात्यायनी व्रत में भाग लेने के लिए नहीं गई और उनको किसी और के साथ विवाह होना पड़ा और उनको कुछ बच्चे भी हुए थे। खाली उनका एक ही कमी था, क्या था, वरिष्ठ नित्य सिद्ध चरी गोपियां, नित्य चरी गोपियां हैं, उनका संगति प्राप्त नहीं हुआ था, उनके अंडर ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुआ था। ये कमी की वजह से योगमाया ने कहा कुछ समय के लिए रहो, और कुछ दिनों के बाद यही गोपियां कृष्ण मिलने के लिए गई। आचार्य को उदाहरण देते हैं, कि योगमाया ने किस प्रकार इन सारे गोपियों को कृष्ण के सामने पेश किया। जैसे एक राजा का नौकर होता है, वो एक वृक्ष से चार पांच आम देखता है पका हुआ, तो क्या करता है वो वृक्ष का सारा आम निकाल लेता है, निकाल के एक जगह रखता है और रखने के बाद जो जो पका हुआ आम है उसको अर्पण करता है। जैसे तीन चार दिन के बाद कुछ आम पकता जाते हैं वो आम को अर्पण करता है, उसी प्रकार योगमाया आश्रिता कृष्ण ने योगमाया का आश्रय ग्रहण किया। योगमाया ने क्या किया, सारे गोपियों ने गोपियों को इकट्ठा की, कृष्ण के रास्ते में भाग लेने की योग्यता वाले गोपियों को इकट्ठा करके व्रज में उनका जन्म हुआ और जो गोपियां कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से पक गई थी उनको तो भेज दिया, जब तक पके नहीं है कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से पके नहीं है उन गोपियों को रखी, क्योंकि उनका अभी भी थोड़ा सा देह के साथ संबंध है, लेकिन उस प्रकार का संबंध नहीं जिस प्रकार का हमारा है, वो बाद में हमको पता लगता है, उनको रखा। जैसे उनको कुछ दिन के लिए रखा, मिलित लोचना, ये सारे गोपियों ने अपनी आंखों को बंद करके वो क्या अनुभव करने लगी, दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पादुता शुभा ज्ञाना प्रत्याच्युता शेष निवृत्य क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ट विरह, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे है कोई आम को पकने के लिए कुछ गर्मी की ताप की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार ये समझ लीजिए हमारा भक्ति को भी पकाने के लिए ताप की आवश्यकता है। क्या ताप की आवश्यकता है, क्या ताप की आवश्यकता है, कृष्ण विरह का जो ताप है वो उसकी आवश्यकता है। इससे भगवान कृष्ण ने कृष्ण विरह का ताप प्रदान किया उन गोपियों को, ताकि ये जो कृष्ण विरह का जो ताप है वो अनुभव करके ये गोपियां पक जाए। ये कृष्ण विरह दुस्सह प्रेष्ट विरह, श्रेष्ठ मतलब प्रिय कृष्ण का विरह, दुस्सह जो सहन करने लायक नहीं है, यानी इतना तीव्र कृष्ण विरह का जो ताप है उसको तीव्र तापा दुथा शुभा। दुथा शुभा का अर्थ क्या है, उनका सारा अशुभ जो है वो धो दिया। तब प्रश्न आता है कि क्या है वे, इन गोपियों का जन्म मिला उनके अंदर क्या अशुभ हो सकता है, दुथा शुभ, कोई अशुभ है क्या उनके अंदर, कोई अशुभ नहीं है, परम पवित्र है गोपियां। जो गोपियां रह गई अपने घर में जिनको पतियों में बांध के रखे वो गोपियां भी परम पवित्र हैं, उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त है, लेकिन पका हुआ कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है। फिर भी इधर दुथा शुभा करके क्यों इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लग सकता है साधारण बुद्धि से उनके अंदर कुछ अशुभ था वो नाश हो गया, नहीं, ये दुथा शुभा सूचित करता है तीव्र तापा। गोपियों का जो विरह जो अनुभूति है, कृष्ण विरह का अनुभूति, ये अनुभूति का जो दुख है, इस जगत में कितने भी अशुभ चीजें अशुभ से उत्पन्न हुआ दुख से इतना महान था उन सब को धो दिया। यानी शिवजी ने एक जहर पिया था और अनेकों अनेकों अशुभ कार्य इस जगत में, वो सारे जो अशुभ कार्य से उत्पन्न हुआ जो दुख है कलमश है वो सब कुछ क्षीण हो गया, वो सब कुछ यानी उनके सामने कुछ भी नहीं रहा। गोपियों ने जो ताप को अनुभव किया, यानी कृष्ण विरह का जो दुख है, इस सारे जगत का दुख को कुछ भी नहीं है या उसको नगण्य बना देता है, उनको एक कण के रूप में बना देता है, इसलिए इस रूप में कहा गया है तीव्रता पादुता शुभ ध्याना प्रत्याच्युता श्लेष निवृत्य क्षीण मंगला, निवृत्य क्षीण मंगला। लेकिन एक गोपियों ने जो ध्यान किया कृष्ण का विरह में, कृष्ण का विरह में जो ध्यान होता है, समझ लीजिएगा विरह और मिलन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्तों के प्रति मिलन होता है उसके अंदर विरह को देखना और कृष्ण के विरह में मिलन को देखना, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। जब गोपियां कृष्ण का विरह को अनुभव कर रही हैं, अस्तित्व में कृष्ण का मिलन हो रहा है। बहिरंगिक विरह है, अंतरंगिक मिलन है। लेकिन जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आती हैं, तब बहिरंगिक मिलन है, तो कृष्ण और गोपियां दोनों आलिंगन करते हैं। लेकिन आलिंगन क्यों करते हैं? क्योंकि अंतरंगिक विरह का अनुभव हो रहा है, इसलिए चाहते हैं कि मैं उनको आलिंगन करूं, मैं अपने बस हृदय के अंदर रखूं, क्योंकि हृदय के अंदर उनकी कमी का अनुभव हो रहा है। तो मिलन में विरह को देखना, विरह में मिलन को देखना, ये हमारा बेहद क्यों यह सिद्धांत है। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता पादुता शुभ ध्यान प्रत्यक्ष निवृत्त क्षीर मंगला, सारे जो मंगल है वो भी क्षीण हो गया। क्या मंगल का अर्थ क्या है? इस जगत की कितना भी शुभ चीजें ले लो, मंगलकारी चीज ले लो, वो सब कुछ नहीं है किसके सामने? कृष्ण का ध्यान के सामने। भले ही गोपियां, कुछ गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जा नहीं पाई, वो घर में रहेगी, अपनी पति जो उनके जितने पति हैं उन सबको घर में लॉक करके रखती है, बंद करके रखती है। ये सारे गोपियों ने क्या किया? आंख बंद करके कृष्ण के विरह में, कृष्ण के ऊपर ध्यान करने लगे। ये कृष्ण के विरह में उनका जो ध्यान है, क्षीण मंगला, सारे जगत के मंगल वस्तु को क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में, इससे बढ़कर कोई मंगलकारी कार्य नहीं है। कृष्ण के विरह में कृष्ण का स्मरण करना, इससे बढ़कर कोई मंगलकारी वस्तु नहीं है। इसलिए क्षीण मंगला, सारे जो मंगल करके माना जाते हैं इस जगत में, उस सबको क्षीण कर दिया। तमेव परमात्मानं चारबुद्ध्यापि संगताः जर्षुगुणमयं देहं सद्यपक्षीण बंधनाः। तमेवं परमात्मानं, तो ये शब्द परमात्मानं सुनिए। कोई सोच सकता है तमेवं, गोपियों ने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया ध्यान करते हुए। सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों को बड़ा गुप्त रूप में वर्णन कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम इतना गुप्त है तो उसको देना भी है और खुला भी नहीं करना है, क्या करें? इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को ऐसा वर्णन कर रहे हैं, अगर बहिरंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसा लगता है अभी गोपियों ने कृष्ण के ऊपर ध्यान किया और ध्यान करके उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और वो शांत हो गए। लेकिन इधर तमेव परमात्मानम, वो लोगों ने क्या किया? कृष्ण को प्राप्त किए। इधर परमात्मानम, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का परमात्मा तत्व नहीं है, परम आत्मानम। आत्मानम शब्द का अर्थ यह है कि अपना प्रिय व्यक्ति को आत्मानम कहा जाता है। इधर परमात्मानम का अर्थ क्या है? कृष्ण जो है परम प्रिय व्यक्ति को लोगों ने प्राप्त किया। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट में कह दिया, दुस्सह तीव्रताप, दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप, कृष्ण के विरह में तीव्र ताप को अनुभव करते हुए कुछ ही दिनों में, चार पांच दिवस में इन्हीं यही गोपियां क्या किए? कृष्ण को प्राप्त किए। कैसे प्राप्त किए? वो जंगहु देहम, ये जो जरहु गुणमयम देहम, ये गुणमयम देहम, क्या गोपियों के पास गुणमय देह था? नहीं। योग माया के आयोजन की वजह से उनकी पतियों को लगा, अच्छा हमारी पत्नियां इधर ही है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर को धारण किए। यही गोपियां, जिस गोपियों को रासलीला में भाग लेने को मौका नहीं मिला उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन, आगे दो तीन दिन के बाद जब वही रासलीला चल रहा था उस समय योग माया ने क्या किया? आध्यात्मिक देह प्रदान किया इन गोपियों को, आध्यात्मिक देह को प्रदान किया। उस आध्यात्मिक देह में सद्य पक्षी न बंदना, आध्यात्मिक देह में सारे गोपियां कृष्ण के पास गई। वो कब गई? कब गई? जब तम एव परमात्मानम, एव शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। पहले उनको थोड़ा सा ऐसा मन में विचार था, अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, वो हल्का सूक्ष्म विचार था। वो विचार भी सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? दुस्सह प्रेष्ट विरह, इससे भगवान भक्तों को विरह देते हैं। क्योंकि वो तीव्र ताप की वजह से पक जाता है। आम तो आम है लेकिन पका हुआ आम जो है वही खाया जाता है। इसलिए कृष्ण जो है इन गोपियों को तीव्र तापा दुस्सह प्रेष्ठ रहा तीव्र ताप प्रदान किया, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, कृष्ण को प्राप्त किया। तम एव परमात्मानम, कृष्ण ही मेरा परम प्रिय व्यक्ति है, उसके अलावा मेरे लिए जीवन में कोई है नहीं, ये भाव के साथ गोपियों ने कृष्ण का शरण लिया। देखिए गोपियों का ये शरणागति की जो विधि है, किस प्रकार शरण लिए, वो सुनने मात्र से हमको भी ऐसा लगता है कब कब ये बात आएगा, कब होगा ये सब संसार के प्रति उसके प्रति आसक्ति इसके प्रति कब छूटेगा और मैं केवल कृष्ण का ही कब रहूंगा, कृष्ण का ही कब रहूंगी, ये विचार कब आएगा, ये विचार करना चाहिए। जैसे इन गोपियों ने इस प्रकार कृष्ण का शरण ग्रहण किए, कृष्ण के पास गए, तो परीक्षित महाराज के अंदर एक प्रश्न आया। अस्तित्व परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं था ये, परीक्षित महाराज ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी अपनी आंख बंद करके प्रवचन दे रहे हैं, एक वर्णन है, इस आंख बंद करके प्रवचन दे रहे परीक्षित महाराज ये बातें सुन के कृष्ण कामुक हो गए, गोपियों के साथ रमण कर रहे परब्रह्म कृष्ण है और अन्य के पतियों पत्नियों के साथ अविवाहित स्त्रियों के साथ रास करने वाले रमण करने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी परम आनंद में आंखों में आंसू बहाते हुए इस कृष्ण के परम गुह्य लीला को जब वर्णन कर रहे थे, उस सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे। कुछ लोग सोच रहे थे क्या हो क्या रहा है भाई, इधर ये क्या बोल रहा है, उनको उनको जज नहीं रहा था, उनको आस्वादन नहीं हो रहा था, वो कुछ सोच रहे थे ये उचित नहीं इधर बैठना। अनेकों लोगों के मन में इस प्रकार की शंका आई। तब परीक्षित महाराज ने उनकी शंका को दूर करने के लिए प्रश्न पूछा। श्री परीक्षित वाच, कृष्णम विदुह बरम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमां सासाम गुणधियाम कथम। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि कृष्णम विदु परम कांतम, सारे गोपियों ने कृष्ण को परम कांतम प्रिय व्यक्ति के रूप में लोगों ने चुना है, इन सारे गोपियों ने, और कृष्ण को वो पर ब्रह्म के रूप में नहीं जानते सब, न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमां, ये गुणों के अंतर्गत हैं, यानी किसी से प्रेम करना, किसी के पास जाके वो भी अपने पति को छोड़ किसी के पास जाना, विवाहित हुए बिना किसी पुरुष के पास जाना, ये तो गुणों के अंतर्गत वाली बात है। तासाम गुणद्याम खत्म, गुणद्याम उनके मन जो है गुणों के अंतर्गत है, परब्रह्म को कृष्ण परब्रह्म ही करके नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है तमेव वित्वा मेति मृत्युमेति, प्रसिद्ध में कहा गया है वही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो विदित्वान, जो जानता है कृष्ण की परम ब्रह्म अवस्था को। कृष्ण को जब तक परम ब्रह्म के रूप में नहीं जानता है तब तक वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये गोपियां तो कृष्ण को भगवान के रूप में ही जानते, वो कृष्ण को कांतम एक प्रिय व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लवर के रूप में जानते हैं, और ये जो प्रेम है ये तो गुणात्मक चीज है। तासाम गुणध्याम कथम, ये कैसे वो लोग इस प्रकार अपना जो आसक्ति है परिवार के साथ वो उनका छूट गया। तब सुखदेव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया, क्रोध दिखाए सुखदेव गोस्वामी किसके ऊपर, परीक्षित महाराज, लेकिन उनका क्रोध था अन्य लोगों के ऊपर। उक्तम पुरस्ताद एतत्ते, सुखदेव गोस्वामी कहा क्रोध से कहो ना तुमने, उक्तम पुरस्ताद, हे परीक्षित पुरस्ताद, पहले मैं पहले कह चुका हूं, उक्तम मैं पहले कह चुका हूं, क्या है एतत्ते तुमको मैं कहा था, चेद्य सिद्धिम यथागता, चेद्य सिद्धिम यथागता, चेद्य राजा यानी शिशुपाल, शिशुपाल के बारे में पहले कह चुका हूं, यानी सातवें स्कंद में, अभी शिशुपाल का लीला आया नहीं, लेकिन सातवें स्कंद में एक जगह शिशुपाल के बारे में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे सुखदेव गोस्वामी, हे परीक्षित सुनो, कि ये जो शिशुपाल है वो कृष्ण से ईर्ष्या करता था, लेकिन कृष्ण ने उनको उद्धार किया। उक्तम पुरस्तार ये चैद्य सिद्धि में था, जिस प्रकार चैद्य राजा शिशुपाल का उद्धार के बारे में पहले कहा था, द्विशम नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षजा प्रियः, द्विशम नपि ऋषिकेशम, ये चैद्य राजा शिशुपाल द्विशम नपि, वो कृष्ण से द्वेष करने पर भी उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। कृष्ण से द्वेष करने पर भी कृष्ण ने उनको मुक्ति प्रदान किया। किमुता, अगर ऐसा है तो अधोक्षजा प्रिया, इन गोपियों की क्या कहना, जो अधोक्षजा प्रिया, जो कृष्ण से प्रेम करने वालों की क्या कहना, एक अमुच्चिक नाय कहा जाता है, जो कृष्ण से द्वेष करने वालों को मुक्ति मिला, जो कृष्ण से प्रेम करने वालों को क्या मिलेगा। परीक्षित महाराज को बहुत गुस्से से कहा सुखदेव गोस्वामी ने, उत्तम पुरस्कार भूल गया क्या इस बात को तुम, दो स्कंद पहले, एक दो दिन पहले तुमको कहा था, जो कृष्ण से द्वेष करने वाला व्यक्ति का भी उद्धार होता है तो उनसे प्रेम करने वाले वालों के क्या कहना। कि मुता धोक्षजा प्रिय, बाद में सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा शांत होते, डांटने के बाद शांत हो जाता व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी शांत होके, चलो तुमने प्रश्न पूछा ना, चलो उसका जवाब देता हूं, लो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, कामम क्रोधम भयम स्नेहम, ऐक्यम सौहृदमेव एव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। जो कामम, काम के द्वारा प्रेरित के जैसे गोपियां, क्रोधम, क्रोध से कोई भगवान की सेवा करता है भीष्म पितामह, भयम, भय से कोई भगवान की सेवा करता है कंस, स्नेहम जैसे नंद महाराज इत्यादि, ऐक्यम कुछ ऐसे योगी जन है इंपर्सन जो मायावादी है, या मायावादी नहीं ब्रह्मवादी है, भगवान से एकाकार होने का प्रयास करते हैं, सौहृदम एवच जैसे सुहृदम अर्जुन इत्यादि, नित्यम हरो विदधत्तो यान्ति तन्मयताम हिते, वो सब लोग कृष्ण को प्राप्त करते हैं, यानी कृष्ण से किसी भी तरीके से जुड़ो कृष्ण उसको उद्धार करेंगे। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, सम हो बी कनेक्टेड विद कृष्णा, हमारी जो भावना है वो सब कृष्ण को अर्पण करो। इतना हद तक कि साधना के स्तर में भी अगर गुस्सा भी आता है ना, कृष्ण के पास आके गुस्सा करो, नो प्रॉब्लम, किसी और के प्रति गुस्सा करने का भी कुछ मतलब नहीं है, उसको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। और दुख भी आता है कृष्ण के पास, स्नेह भी है तो कृष्ण से करो, क्योंकि हमारा हृदय का जो राजा है कृष्ण है। हमने अपने हृदय के राजा को किसी और को बना लिया है, कोई काम क्रोध लोभ अन्य वस्तुओं को बना के रखा है, मुझे ये चाहिए, जब तक ये चाहिए नहीं मिले तब तक चैन नहीं मिलेगा, एक मोबाइल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, जब एक बच्चा जब तक खिलौना नहीं चाहिए तब तक रोता है, यानी कितना मूर्खता है, देखिए वो खिलौना मिलने वाला क्या है उसको। आप ऐसा सोचते हो कि बच्चे क्यों रो रहा है, बच्चा खिलौना के लिए रो रहा है, बच्चा है। तो वैसे ही जो बड़े होने के बाद भी अन्य वस्तुओं के लिए हम जब रोते हैं आशा करते हैं, ये भी हमारी बचपना है, ये भी हमारी मूर्खता है, कृष्ण के लिए ही रोना सीखना चाहिए जैसे गोपियां। बाद में उन्होंने कहा न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरे कृष्णे यतएतद् विमुच्यते। तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जवाब देते हुए आगे कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कृष्ण से जुड़े रहने से कृष्ण हमको उद्धार करते हैं। न चैवं विस्मय कार्यो, ऐसा है तो इस पे कोई विस्मय चीज नहीं है, इस पे कोई आश्चर्य नहीं है। भवता भगवत त्यजे, हे भगवत त्यजे भगवान अजय यानी अज योगेश्वरे कृष्ण यत एतद् विमुच्यते, भगवान अजय अधोक्षज तत्व को वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी। भले ही भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के रासलीला में है, कभी भी ये मत समझो उनका कोई स्थिति कम हुआ है, फिर भी वो भगवान है, फिर भी वो योगेश्वर है, फिर भी वो कृष्ण है। यतएतद् विमुच्यते ता दृष्ट्वान्तिकं मायात भगवान भजयोषिता अवदवत् वदताम श्रेष्ठो वाच प्रेषेर विमोहयन। अभी इस श्लोक के साथ समाप्त करेंगे। सुखदेव गोस्वामी तत्व को वर्णन करते हुए कहते हैं, कृष्ण या गोपियों में जरा सा भी दोष नहीं है। यतएतद् विमुच्यते, कोई भी कृष्ण के संपर्क में आता है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इन गोपियों की क्या कहना जो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। अभी परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है और अन्य लोगों के मन में संदेह है उसको दूर करके सुखदेव गोस्वामी वापस जिला में आते हैं। आके क्या कहते हैं, तादृष्ट्वान्तिकम् आयात आयात, जो आए हुए गोपियों को दृष्ट्वान्तिकम् देख के भगवान व्रजयोषितः, भगवान श्री कृष्ण कौन आए थे, व्रजयोषितः अवदवत् वदताम श्रेष्ठो, बोलना शुरू किया, अवदवत् बोलना शुरू किए, कौन बोलना शुरू किए, वदताम श्रेष्ठो, बोलने में अत्यंत पटु है कृष्ण। बेचारा अर्जुन बोल रहा था कि क्या क्या बड़े बड़े बुद्धिमता से कृष्ण अर्जुन कह रहा था, युद्ध क्यों नहीं करूंगा, पांच कारण दिया, लेकिन वदताम श्रेष्ठो, बोलने में अति पटु कृष्ण, उनका पूरा माइंड चेंज किया। ये पटु वचन वाले होते हैं, एकदम बोल अच्छा बोलने वाले होते हैं, जिसके अंदर वाक चातुर्य है, वाक चपलता है, आप कुछ भी बात प्रस्तुत करो उसको गलत साबित करेंगे। आप कोई चीज को गलत करो, कल गलत बोलो उसको सही कर देंगे। दिन को रात, रात को दिन के रूप में साबित करने में वो एक्सपर्ट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कोई कुछ कहता था तो उनको तुरंत काट देते, तर्क के द्वारा उसको काट के कुछ साबित करते, सब लोग हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने स्थापना इसको वापस काट के कुछ और स्थापना करते थे। इसको वाक चातुरी कहा जाता है, इसलिए उसी बात को कहा गया है, वदताम श्रेष्ठो वाच प्रेषेर विमोहयन। कृष्ण ने कुछ ऐसी बातों को कहा, कुछ आगे के कुछ श्लोकों में, 10-15 श्लोकों में कृष्ण इतना इतना सुंदर सुंदर श्लोकों को उच्चारण करते हैं, सब में डबल मीनिंग है। इसलिए कहा गया है वाच प्रेषेर विमोहयन, ये कृष्ण का आदत है। भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया, बार बार दो दो बातों को कहते हैं अर्जुन, कुछ सही में युद्ध करूं ना करूं, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहे इसी में। अर्जुन ने इस बात को कहा, आप मिश्रित बातें कहते हो, वो कृष्ण का आदत है, कुछ भी कहेंगे ना वो सीधा नहीं कहेंगे, वो चलते भी तो टेढ़ा, उनका सब टेढ़ा है ना, तो वैसे उनके वचन भी टेढ़े हैं, सब में डबल मीनिंग है। प्रेचर वाच प्रेषेर विमोहन, गोपियों को कृष्ण विमोहित किया अपने वचन के द्वारा। रासलीला का तैयारी वचन से होता है। जैसे गोपियां जैसे आई, कृष्ण अनेकों ने क्वेश्चन से कहा, अरे आप इधर क्यों आए हो रात को। लेकिन वही बात अगर दूसरा अर्थ लिया जाए, बहुत अच्छा हुआ आप मेरे लिए आए। अभी गोपियां कौन सा अर्थ को ले, वो सीधा अर्थ ले या दूसरा अर्थ ले। तो वैसे डबल मीनिंग वाले बातों को कहते हुए कृष्ण ने सारे गोपियों को विमोहित किया। अभी गोपियां एक तरीके से तो वो सोच रही कि कृष्ण हमको दुखी कर दिए, वापस जाना पड़ेगा। वो सर झुका के आंखों में आंसू बहाते हुए सारे गोपियों ने पूरा जमीन को गीला करके कृष्ण का नाम लिखने लगी, और कुछ गोपियां क्रोध में गुस्से में वो कृष्ण के से कुछ बोलना शुरू किया। कि आप ही कुछ डबल मीनिंग वाले हो, हम भी डबल मीनिंग वाले। गोपियों ने भी कहा कृष्ण को, ठीक है हम तो जाना नहीं चाहते हैं, आपके चरण में आए हैं, हमको स्वीकार करो। लेकिन उसी बात को अगर दूसरा, उसी श्लोक को दूसरा अर्थ लेंगे तो गोपियों कहना है था तुमसे मिलने के लिए थोड़ी ना आए, हम आए हैं, तुमने कैसे समझ लिया तुमसे मिलने के लिए आए। तो एक एक श्लोक की इतना सुंदर सुंदर अर्थ है, दो दो अर्थ है। तो अंततः गोपियों की इन बातों को कृष्ण ने कुछ कहा, गोपियों ने कुछ और कहा, तो कृष्ण अति प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर गोपियों के साथ रास करना शुरू किए। ये अध्याय इस प्रकार समाप्त होता है। अगले अध्याय में हमको प्राप्त होता है किस प्रकार कृष्ण इन गोपियों के अंदर मान देखे चले गए। लेकिन बहिरंगिक चीज है, मान नहीं देख, मान तो था बहिरंगिक कारण, या उनके अंदर ये आ गया था, अहंकार आ गया था कि कृष्ण हमारे साथ में है। लेकिन बात यह है कि कृष्ण ने सोचा विरह के बिना संयोग जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, विरह देना होगा। तब विरह देते हैं तो विरह में कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां गई, वो गोपी गीत है। तो गोपी गीत भी इन पांच अध्यायों के अंतर्गत एक अध्याय है। अभी तक हमने परीक्षित महाराज का प्रश्न, उनका जो जवाब है सुखदेव गोस्वामी का, और सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार शुरू किया कृष्ण और गोपियों के बीच संवाद, उधर तक हमने चर्चा किया। अब ये ध्यान में रखे, ये बहुत बहुत गुह्य बात है और इनको आस्वादन करना है तो हमको बहुत कड़ाई से साधना करना होगा। हम साधना करते करते मन शुद्ध होगा, भागवत अन्य आचार्य प्रभुपाद जी इनसे प्रार्थना करेंगे तो भागवत में हमारी रुचि उत्पन्न होगी। अस्तित्व में हमको आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जो है उनका जन्म लीला जन्म उत्सव साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये साधक भक्त भी होते हैं। कृष्ण का जन्म जो है हर रोज हर क्षण मना सकते हो। अगर हरि नाम में रुचि है, भागवत में रुचि है, तो हर रोज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हर रोज मना सकते हो। इसे प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण से, मेरी रुचि हरिनाम में रहे, मेरी रुचि भागवत में रहे, कृष्ण आपके बारे में हमेशा सुनता रहूं और इस प्रकार मेरा जीवन यापन करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक बजा है, भजन होगा इधर 2:30 बजे, कृष्ण जन्म लीला होगा, लाल गोविंद प्रोद करेंगे, तो 2:30 बजे फिर प्रवचन होगा, 2:30 बजे से 4:30-5 बजे तक होगा, उसके बाद कीर्तन चालू रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय।